ओम शांति। पिछले 2-3 दिनों से आप सभी आध्यात्मिक ज्ञान को सुन रहे हो। यूं कहें कि आप अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर कर रहे हो, है ना? ऐसा अभी आपने ज्ञान तो बहुत सुन लिया, कई नई बातें आपको जानने को मिली होगी यहाँ, लेकिन ये केवल जानने से, सुनने से क्या हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ज्ञान जो आपने सुना है, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में कैसे लाएं? क्योंकि ज्ञान वो चीज है जिससे हमारा जीवन एक श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। हमारे पास सब इन्फॉर्मेशंस है, ज्ञान माना इन्फॉर्मेशंस कहो, ज्ञान माना समझ कहो, तो हमारे पास वो समझ है, लेकिन वो समझ प्रैक्टिकल लाइफ में आए तब लाइफ हमारी बनती है, जीवन तब बनता है। भक्ति में हम लोगों ने गीता कितने जन्मों से, कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन गीता बना? गीता का ज्ञान हमारे जीवन में आया नहीं। तो अब ये राजयोग का जो ज्ञान है वो इतना सहज तरीके से हमें मिल जाता है कि जिससे हमारी जीवन बन जाती है। तो आध्यात्मिकता किसको कहेंगे? आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, हम किसको कहेंगे आध्यात्मिकता? किसको कहेंगे आप? धार्मिकता और आध्यात्मिकता सेम है या अलग अलग है? ये तो आप जानते हो कि अलग अलग है। धर्म में हमने क्या किया? धर्म में, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, वहां हमने क्या किया है? बाकी देखा ये जाता है कि धर्म के अंदर भी आध्यात्मिकता है, लेकिन हमने वो आध्यात्मिकता को समझने का कभी प्रयास नहीं किया है। आप देखो कि जो भजन, जो प्रार्थना हमारे फोर फादर्स ने गाई है, वही प्रार्थना, वही भजन हम भी गा रहे हैं, लेकिन कभी भी वो भजन को समझने का प्रयास किया हमने? किया? उसमें भी समझ थी, ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान हमारी समझ से परे का था। जब ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिलता है, यहाँ जो भी ज्ञान आपने सुना है, जिसको हम कहे कि आध्यात्मिक ज्ञान है, और जिस ज्ञान से हम अपने जीवन को एक ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। भक्ति में हमने गाया जरूर कि नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बन सकता है, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बन सकती है, लेकिन कोई भी धर्म ने हमें ये ज्ञान दिया कि आप कैसे ज्ञान को धारण करेंगे तो आप नारायण बनेंगे, कौन सी बात को जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप लक्ष्मी बनेंगे, किसी ने ये सिखाया? कैसे कर्म करने से हम नारायण बन सकते हैं? तो ये बात यहाँ समझने को मिलती है। आज शाम को और आपका एक टॉपिक रहा हुआ है कर्म का ज्ञान, जिससे आपके जीवन में एक कर्म के बारे में जो भी सच्चाई है वो आपको पता चलेगी, क्योंकि वैसे कर्म करना हमें किसी ने सिखाया नहीं। आत्मा का जो ज्ञान आपको मिला, आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर बड़ा महत्व है आत्मा का, और आत्मा के ज्ञान से हमारे जीवन में एक रोशनी आ गई, एक प्रकाश आ गया। मोटे रूप से हमें ये तो पता है कि ये शरीर के अंदर आत्मा है, ये सब जानते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आत्मा किसे कहा जाता है। लेकिन अब आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है, वो क्वालिटी को जब तक मैं मेरे जीवन में लाऊंगी नहीं, तब तक मैं मेरे जीवन को आदर्श नहीं बना सकूंगी। तो वो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी वो कैसे मेरे अंदर आए? आपने सुना कि आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है। क्या बोलने से मैं शांत स्वरूप हो जाऊंगी? बोलने से मैं सुख स्वरूप हो जाऊंगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये जीवन के अंदर, ये यात्रा के अंदर हमें बहुत सारे पेपर्स आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, आती है ना? सुबह उठते हैं तब हम ये समझते हैं कि आज सारा दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। क्या होता है ऐसा? होता है? नहीं होता है। आज सब मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे या मैं सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ऐसा? नहीं होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है कि जिस परिस्थिति को ओवरकम करने के लिए शक्ति चाहिए ना, उस पेपर को पार करने के लिए मुझे ताकत चाहिए। बहुत सिंपल बात है कि किसी ने आकर के आपकी इंसल्ट कर दी और आप सोचते ही रह गए कि इसने मेरी इंसल्ट क्यों किया, सबके बीच में इंसल्ट किया, उस समय क्या मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो मैं उसी वक्त में स्टेबल रह सकती हूँ। कोई भी परिस्थिति आए, वो परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। कोई भी बात जीवन के अंदर घटती है, हमें कुछ लेसन सिखा करके जाती है। लेकिन लेसन वो सीखता है जिन्हें वो पॉजिटिव सोचने की आदत होती है। अगर मैंने समझा कि मेरी इंसल्ट क्यों किया सबके बीच में, तो मैं पॉजिटिव भी सोच सकती हूँ और नेगेटिव भी सोच सकती हूँ। पॉजिटिव में कैसे सोचूंगी? किसी ने मेरी इंसल्ट किया, क्या मैं उस समय पॉजिटिव सोच सकती हूँ? सोच सकती हूँ? किस प्रकार के विचार हम क्रिएट करें उसी समय? साइलेंस तो रह सकते हैं, बाहर से साइलेंस रहे, लेकिन मन साइलेंस रहना चाहिए। एक भी व्यर्थ संकल्प मेरे अंदर न उठे, क्या हो सकता है? हो सकता है, अभ्यास से हो सकता है, प्रैक्टिस से हो सकता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है आध्यात्मिकता की, तब तक मन के अंदर द्वंद चलता रहता है। कोई गुस्सा करता है, कोई मुझे अपशब्द बोल देता है, वो परिस्थिति में मेरा स्टेट ऑफ माइंड शांत रहे। बहुत अच्छी बात कि हम ये सोचें कि कोई भी व्यक्ति हमें क्या दे सकता है। जिसके पास जो होगा वो ही देगा ना। जैसे फूल बेचने वाला होगा, उसको जाकर के आप कहो कि भैया मुझे सब्जी दे दो, तो वो सब्जी देगा आपको? वो कहेगा बेन मैं फूल बेच रहा हूँ, मेरे पास फूल है, आप फूल लेके जाइए, सब्जी मेरे पास नहीं है, है ना? तो जिसके पास जो होता है वो दूसरे को वही दे सकता है। अगर सामने वाले ने मेरे को हर्ट किया, दुख दिया, तो क्या समझे कि उसके पास क्या है? वही चीज है जो मुझे दे रहा है। एक बहुत अच्छा संदेश आया था आजकल व्हाट्सएप पे, संदेश तो बहुत अच्छे अच्छे भी आते हैं, कभी कभी व्यर्थ भी आते हैं, लेकिन उनसे हम क्या सीखते हैं। तो लिखत आई थी कि दुकान को लॉक लगा हुआ है, दुकान खुलती है तो पता चलता है कि वो कोयले की दुकान है या सोना चांदी की दुकान है। सेम वे हमारे होठों को ताला लगा हुआ है, लेकिन जब खोलते हैं तो पता चलता है कि मेरे पास कौन सा माल है, है ना? किसी को मैं सुख देने वाले वचन बोलती हूँ या किसी को अपसेट, दुखी करने वाले वचन बोलती हूँ, और मैं वो ही बोलूंगी जो मेरे पास है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में प्रैक्टिकल लाने के लिए अभ्यास चाहिए। हम बातें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद मैं कौन सी बातों को अंडरलाइन करूं? क्योंकि हर आत्मा के अंदर दोनों क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटीज भी है और नेगेटिव क्वालिटी भी है ना? कि हम ये कहें कि हमारे पास केवल पॉजिटिव क्वालिटी ही है, हाँ परसेंटेज वाइज जरूर होगी, किसी के पास कोई ज्यादा है, किसी के पास कोई ज्यादा है, कोई के अंदर प्रेम ज्यादा है, किसी के अंदर नफरत ज्यादा है। प्रेम और नफरत दोनों ही हमारे अंदर हैं, लेकिन मैं किस चीज का प्रयोग कर रही हूं? तो आत्मा की सात क्वालिटी जो है, अनादि गुण जिसको कहें, वो अनादि गुण हमें अपने जीवन में धारण करना है। हम मेडिटेशन में क्या करते हैं? यही जो गुण है आत्मा के, उन गुणों को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। और वो गुण है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियां। ये सात गुण है आत्मा के। हर आत्मा, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो रोड पर ऐसे ही घूमने वाला व्यक्ति है, चाहे वो टेररिस्ट है, कोई भी है, सबके अंदर ये सात क्वालिटी जरूर है। लेकिन कौन सी क्वालिटी मैंने इमर्ज की है? कितना भी दुखी इंसान होगा, वो कभी भी सुख की इच्छा छोड़ेगा? गुस्सा करने वाला व्यक्ति गुस्सा करने के बाद क्या कहेगा? मुझे शांति में रहने दो, कहते हैं ना ऐसा। खुद दूसरों की शांति को भंग कर सकता है, लेकिन खुद को क्या चाहिए? शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है वो। आज हर एक व्यक्ति क्या चाहते हैं एक दूसरे से? प्रेम चाहते हैं। और प्रेम मांगने से मिलेगा? ये जो क्वालिटीज हैं, सातों ही क्वालिटी, जितना आप दूसरों को देंगे उतना हमारी बढ़ेगी, है ना? दान करने से बढ़ेगी, यहां दान करने से कम होने वाली क्वालिटीज नहीं है। आप दूसरों को सुख देंगे, हमें सुख मिलेगा। आप दूसरों को शांति देंगे, हमें शांति मिलेगी। ये भी है कि हम दुख देंगे तो हमें भी वो दुख वापस मिलेगा, है ना? तो आध्यात्मिकता जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और जितना इन गुणों को डेवलप करते चले जाएं, रोज एक छोटा सा एम, छोटा सा लक्ष्य हम अपने जीवन में रखें कि आज सारा दिन मुझे कोई न कोई रीति से सबको सुख देना है। क्या हो सकता है ऐसा? किसी न किसी रीति से मुझे सुख देना है, तो दुख देने का ख्याल मुझे नहीं आएगा। और आप जब दूसरों को सुख देंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। आज मुझे सबको शांति देनी है, मेरे व्यवहार से, मेरे वाइब्रेशन से, मेरी वाणी से मैं दूसरों को शांति दे सकती हूँ। आप कहाँ पर भी किसी के घर में आप गए, वो घर का वातावरण से आप फील करते हो कि इस घर में शांति है या अशांति। होता है ना ऐसा कभी अनुभव? कोई घर के अंदर लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं, तो वो वाइब्रेशंस वो घर के वैसे बने हुए होते हैं। तो आप ज्यादा समय बैठना पसंद नहीं करेंगे यदि आप शांति के चाहक हैं तो, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपको, आपके मन को अशांत कर रहा है। तो हम जैसे विचार करते हैं वो विचार हमारे आसपास का ओरा बनाते हैं। भले हम बाहर से किसी के साथ बहुत मीठी बातें बना बोलते भी हैं, लेकिन अंदर में यदि हमारा कुछ और विचार चलते हैं, तो वो बातों के बजाय जो विचार चल रहे हैं वो विचार हमारे आसपास का वाइब्रेशंस बना रहा है, और वो वाइब्रेशंस की वजह से हम इंटरेक्शन में आते हैं। होता है ना ऐसा कि किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है और किसी के साथ उसके नजदीक जाना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस दूर से आते हैं। तो रोज हम अपने जीवन में, आप जब भी उठो, मैं नहीं कहूंगी कि सुबह 4 बजे उठ करके आप मेडिटेशन करो, करो तो बहुत ही फायदा है, ब्रह्म मुहूर्त का समय का बहुत महत्व है भक्ति में भी। लेकिन अब जब भी उठते हो 5 मिनट यदि हम अपने आप को देते हैं, क्योंकि सारा दिन तो हम दूसरों को ही देते रहते हैं, खुद को तो इतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब भी उठते हैं उसी समय हम फोकस करें कि आज सारा दिन में मुझे किस बात को अंडरलाइन करना है, या यूं कहें कि एक अच्छा विचार हम अपने मन के अंदर डाल दें और उसको थोड़ा प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ करें, और कुछ नहीं, ये सोचे कि आज मैं सबके साथ स्माइल करूंगी, कोई भी व्यक्ति सामने आए मैं उनको एक स्माइल दूंगी। हो सकता है एक बार एक दादा ने ये सोच लिया कि मुझे केवल स्माइल ही करनी है, तो वो जब भी वॉकिंग करने जाता था पार्क में, तो रोज वो स्माइल करते हुए वॉकिंग करता था। तो एक लड़के ने देखा कि ये क्या राज है कि ये दादा हमेशा ही स्माइल करता है। तो उसने पूछा दादा को कि दादा, मैं रोज देखता हूं कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, क्या बात है? तो दादा ने कहा कि मेरे पास 2 चॉइस हैं, या तो मैं मुस्कुराते हुए वॉकिंग करूं, या तो मैं माइस होकर के वॉकिंग करूं। अब तुम बताओ कि मैं कौन सा विचार को प्रैक्टिकल कर सकता हूं। तो उसने कहा ठीक है दादा, आप वही सिलेक्ट करेंगे जिससे आपको फायदा हो, क्योंकि मैं नाराज होकर के मुंह लटका करके भी तो वॉकिंग कर सकता हूं, लेकिन मैंने ये ऑप्शन को सिलेक्ट किया कि मैं मुस्कुराते चेहरे से वॉकिंग करूं। कुछ दिन के बाद देखा वो लड़के ने कि दादा वॉकिंग के लिए नहीं आ रहा है, और पता किया कि दादा को एक्सीडेंट हो गया है और दादा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और वो लड़का दौड़ते हुए हॉस्पिटल में गया और उसी समय दादा को ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे। जैसे ही वो सामने आया, दादा ने फिर वही स्माइल दिया उसको। दादा ने कहा कि तुम अभी भी मुझे वही पूछना चाहोगे? तो दादा ने कहा कि मेरे पास अभी भी वही दो ऑप्शन है, और मैंने वो ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और डॉक्टर को कहा है कि मैं वो व्यक्ति हूं कि और लंबा जीना चाहता हूं, और आप ऐसे व्यक्ति का ऑपरेशन करेंगे कि जे और लंबा जीना चाहता है। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। कोई भी बात किसी को कहने के लिए हमें पहले सोचना चाहिए कि ये बात को सामने वाले व्यक्ति को मुझे कहना है तो मुझे कैसे कहना है। शब्द वही होते हैं, लेकिन हमारा जो टोन होता है वो टोन सामने वाले व्यक्ति को दुख दे जाता है। शब्द वही है, लेकिन कहने का जो तरीका होता है वो तरीका यदि हमने प्यार और मधुरता को ऐड करके कहा गया हो तो क्या होता है? वो ही बात को हम प्यार से दूसरे के दिल में जगह बना लेते हैं। कई बार मैं सोचती हूं कि हमारे अंगुलियों के नाखून बढ़ जाते हैं, हम क्या करते हैं? कितनी सावधानी से हम काटते हैं, अंगुली को काटते हैं। क्यों? क्योंकि अंगुली मेरी है और ये जो वेस्ट है उसको हम निकाल देते हैं। लेकिन कभी हमने अपने अंदर को जांच किया कि मेरे अंदर ईगो बढ़ गया है, मेरे अंदर क्रोध बढ़ गया है, उसको मैं काटूं, उसको मैं खत्म करूं? हम अपने ईगो को और ही पानी देते रहते हैं, ईगो को बढ़ाते रहते हैं, गुस्से को बढ़ाते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, ईगो को खत्म करने के बजाय हम अपने संबंधों को खत्म कर देते हैं। होता है ना ऐसा? ईगो क्लैश होता है और ईगो में आकर के, अभिमान में आकर के हम अपने संबंध को ही खत्म कर देते हैं। तो वहां हमारा ध्यान नहीं जाता है कि ईगो को खत्म करना है। जैसे नाखूनों को खत्म कर दिया, तो आध्यात्मिकता में, ज्ञान में ये समझ चाहिए कि हमें जो वेस्ट है, जो वेस्ट हमें ही नुकसान पहुंचा रही है, वो वेस्ट को हमें खत्म करना है। क्योंकि नुकसान किसको होता है? खुद को। एक बार मैं ट्रैवलिंग कर रही थी और फ्लाइट में मेरे बाजू में एक बहुत बड़ा बिल्डर था, मुझे नहीं पता, लेकिन बात करते करते पता चला कि ये बहुत बड़ा बिल्डर है। और उसने कहा कि बहन क्या बताऊं, आजकल की परिस्थिति में हमने बहुत बड़ी दो चार बिल्डिंग एक बेंगलोर में बनाई है, एक बॉम्बे में बनाई है, लेकिन अब वो बिक नहीं रही है क्योंकि क्राइसिस चल रही है, हमारा सारा पैसा उसमें रोका हुआ है। अभी मेरे पास क्या है, मैं उसको क्या सॉल्यूशन देंगी? मैंने कहा कि भैया अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप मेडिटेशन सीखो। अरे बेन, टाइम ही कहाँ है मेडिटेशन सीखने का, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। ठीक है, फिर तो हमारा अपना डेस्टिनेशन आया, हम उतर गए। और 2 साल के बाद अनायास एक किसी के घर में जाना हुआ तो भाई मिल गया और कहा कि बेन याद है आपको, मैं आपको फ्लाइट में मिला था। तभी मेरे को याद आया क्योंकि चेहरा देखने से लगा तो सही कि इसको मैंने कहीं देखा हुआ है। फिर भाई ने कहा कि बेन वैसे तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो जो सिचुएशन आई, वो सिचुएशन ने मुझे 2 बहुत बड़ी गिफ्ट दे दी। मैंने समझा अच्छा कोई गिफ्ट मिली होगी। मैंने कहा कि क्या गिफ्ट मिली भैया आपको, तो कहा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। अभी सोचो कि हमारे पास अपने आप को संभालने के लिए ऐसी सिचुएशंस आती हैं, परीक्षाएं हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन उस समय अगर मैं मेरे माइंड को ट्रेनिंग दे देती हूं, क्योंकि आजकल टेंशन तो बढ़ता ही जा रहा है और जाएगा भी, लेकिन वो टेंशन को ओवरकम करने के लिए ये आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि समय में ऐसी बातें बहुत आने वाली हैं। कुछ साल पहले हम ये कहें कि हार्ट अटैक बहुत बड़ी डिजीज मानी जाती थी, उसके बाद कैंसर को बहुत बड़ी डिजीज मानी जाती थी, लेकिन आज की परिस्थिति में यदि देखा जाए तो डिप्रेशन वो आगे बढ़ता जा रहा है। और डिप्रेशन की परिस्थिति में, डिप्रेशन आने का कारण यदि हम एडवांस में समझ लेते हैं कि डिप्रेशन क्यों आता है, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो वेस्ट व्यर्थ चल रहा है और वो व्यर्थ एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है, वो व्यर्थ को कंट्रोल करने का या तो डाइवर्जन देने का मेरे पास कोई आर्ट नहीं है तो मेरा मन क्या करेगा, मैं डिप्रेस ही हो जाऊंगी। तो ऐसी परिस्थिति में हमें संतुलन बहुत जरूरी होता है कि हम अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें, क्योंकि परिस्थितियां तो बढ़नी ही हैं, रोग भी बढ़ने ही हैं, और ऐसे समय पर मुझे क्या काम में आएगा। तो जो मेडिटेशन हमने अपने जीवन में सीखा है वो मेडिटेशन हमारे काम में आता है। एक बार हम थाईलैंड से आ रहे थे वापस अहमदाबाद, इमिग्रेशन भी क्रॉस कर लिया, रात को 11 बजे हमारी फ्लाइट थी, तो हमेशा तो हम अपने साथ खाना लेकर के चलते हैं, लेकिन उस दिन सोचा कि सुबह 6 बजे तो पहुंच जाएंगे, क्यों लेने का, रात को खाना खा के तो निकल रहे थे, एक जोड़ी कपड़ा भी साथ में रखते थे, लेकिन अभी तो सुबह 6 बजे तो पहुंचना ही था, कपड़े भी साथ में नहीं रखे। और जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां हमको बोला गया कि अभी 4 घंटा फ्लाइट डिले है। अब 4 घंटा तो कोई भी व्यक्ति ठीक है, हो सकता है 4 घंटे के बाद तो जाएंगे, चल जाएगा। 4 घंटा पूरा हुआ, उसके बाद फिर अनाउंसमेंट किया कि और 4 घंटा। फिर हम लोग तो समझ सकते थे परिस्थिति को, लेकिन जो पैसेंजर्स थे उन्होंने इतना झगड़ा, इतना हंगामा किया, क्योंकि हमारे पास उस समय धीरज चाहिए, सहन करने की शक्ति चाहिए, उनकी परिस्थिति को समझने की भी तो ताकत चाहिए ना। हम बिल्कुल क्वाइट थे, लोग हमें देख भी रहे थे और हम लोग उनको भी देख रहे थे कि बराबर उन्होंने तो झगड़ा शुरू कर दिया। अभी 8 घंटा पूरा हुआ, अभी कहते हैं और 4 घंटा। तो इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद तो हम वापस जा नहीं सकते थे, तो हमारे लिए तो एक टेस्ट पेपर था, लेकिन ये भी अच्छा था। फिर हमने तो कहा हमारे साथ, क्योंकि हमारी बड़ी दीदी थी जो ज्ञान सरोवर संभालती है और वो भी 80+, तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी अभी आप चलो, हम होटल के रूम बुक करते हैं आपके लिए, क्योंकि पता नहीं है ये तो कब जाएंगी, फ्लाइट पता ही नहीं है। तो हम लोगों ने फिर दीदी को तो होटल के रूम में ले गए और 15 घंटा हमें एयरपोर्ट पर रहना पड़ा। लेकिन मैं और दीदी थे तो हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा, हम हलचल में नहीं आए। लेकिन बाकी लोगों को जब हमने देखा कि इतने हलचल, इतना लड़ाई झगड़े के बात मत पूछो, क्योंकि ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, तो उस समय हमारी धीरज की परीक्षा होती है, हमारी सहन करने की शक्ति की परीक्षा होती है। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान के आधार से हम वो सिचुएशन को समझ सकते हैं। तो ये आध्यात्मिकता वहां मदद करती है कि कैसी भी बातें आती हैं, लेकिन हमने एडवांस में लेसन को समझ लिया हो तो वो लेसन हमें काम में आता है। एक बार हमारे पास शिविर का ग्रुप आया हुआ था और अहमदाबाद का ग्रुप था, गर्मी के दिन थे और उनका लास्ट लेसन जो चला वो 8 शक्तियों वाला लेसन था, और वो 8 शक्तियों में सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये सब शक्तियों का लेसन उनको मिला। और वो लेसन कंप्लीट करके, भोजन करके वो लोग बस में जा रहे थे वापस। उन्होंने जो बस हायर की थी वो बस थी एयर कंडीशन, लेकिन जो बस आई वो उसमें एयर कंडीशन चल नहीं रहा था और गर्मी के दिन थे। सभी एक दूसरे को देखने लगे कि अब क्या करें, लेकिन ये ज्ञान सुनकर के बस में बैठे थे तो उन्होंने कहा ड्राइवर को कि अगर ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं होते ना तो तुम्हारी खैर नहीं रहती, हम कुछ भी कर सकते थे, तुमको पैसा भी नहीं देते थे, लेकिन ये तुमको ब्रह्मा कुमारी वालों ने बचा दिया, क्योंकि यही ज्ञान सुनकर के हम बैठे थे। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें हर परिस्थिति में मदद करता है। कई बातें हमारे जीवन में आएगी, आती रहती हैं, लेकिन एडवांस में यदि हमने वो लेसन सीख लिया हो तो वो लेसन हमें वो बात को बड़ा नहीं करने देती है। इसीलिए परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति को क्या समझो, पहाड़ जैसी परिस्थिति आई, लेकिन वो पहाड़ जैसी परिस्थिति को हम अपनी स्वस्थिति से राय जैसी बना देते हैं। राय भी थोड़ी सख्त होती है, लेकिन राय को भी रुई बना दो और रुई को तो हम फूंक मार करके उड़ा सकते हैं। वो समझ चाहिए कि बातें तो आएगी, लेकिन बातों को पकड़ करके बैठ गए तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो बातों से हम लेसन सीख करके आगे बढ़े। जैसे हमारे रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर है और हम कहे कि ये पत्थर को कोई उठाए तो हम आगे बढ़े, मेरे पास तो ताकत नहीं है वो पत्थर को हटाने की, लेकिन वो पत्थर को यदि मैं जंप मार सकती हूँ तो जंप मार करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसे ही हमारे जीवन में कई क्वेश्चंस आएंगे। कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चंस को हम समझते हैं कि ये क्वेश्चंस हमें समझ में आ जाए, इसका आंसर मिल जाए तो मैं आगे बढ़ूं। लेकिन मैं यही सजेशन देंगी कि एक साइड पे कर दो वो क्वेश्चंस को। कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसी रोशनी आ जाती है, अचानक स्पार्क हो जाता है और वो स्पार्क हमारे क्वेश्चंस को ओवरकम करने में मदद करता है। लेकिन वो क्वेश्चंस को पकड़ करके बैठ गए तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें एक स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि आगे तब बढ़ा जाता है जब एक स्टेप हम उठाते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग में भी एक स्टेप हिम्मत का चाहिए। जब तक मेरे पास हिम्मत नहीं है तब तक हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव मैं सुनाती हूँ कि मुझे जब ज्ञान मिला था तब मैं केवल 16 साल की थी, लेकिन जब एक समय आया कि मुझे डिसाइड करना है अपनी जीवन के लिए कि अब मुझे कौन सी जीवन को सिलेक्ट करना है, और एक सेंटेंस ने मुझे तुरंत वो स्पार्क जिसको कहे, एक ही बात कल किसने देखा, वो बात ने मुझे डिसीजन लेने में मदद की कि नहीं, जो आज मेरे पास है वो ही मेरी है, क्यों नहीं मैं आज को भगवान की सेवा में समर्पित करूं। और कल किसने देखा, हमको तो पता नहीं है कि मिनट के बाद भी क्या होने वाला है, लेकिन जो आज मेरे पास है वो आज को यदि मैं अपने जीवन को सार्थक बनाने में लगा देती हूँ तो वो जीवन मैं श्रेष्ठता की ओर ले जा सकती हूँ। तो इस आध्यात्मिक मार्ग में बहुत अनुभव होते रहे हैं, और जब न सिर्फ भारत लेकिन विदेश में अलग अलग कल्चर में जाना होता है, और मैं वो देखती हूँ कि उन्हों का कल्चर अलग, उन्हों की भाषा अलग, उन्हों की अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट, लेकिन फिर भी जब आध्यात्मिकता में कुछ प्राप्ति होती है तो वो अपना जीवन कैसे समर्पित करते हैं। मैं तो कहूंगी हम भारत के भाई बहने बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम भगवान की भाषा को समझ सकते हैं, और जो आध्यात्मिकता भारत में है वो कहीं और नहीं है। तो हमारे लिए वो आध्यात्मिकता को एडॉप्ट करना सहज हो जाता है। तो आप सभी भी यहाँ जो कुछ भी सीखा है इतने दिनों में, खास समय निकाल करके आप यहाँ आए ही हो, अब एक स्टेप और हिम्मत का आप उठाएंगे और इनको अपनी जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए, आपके पुणा में तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जो भी ब्रांचेस आपके नजदीक में हैं, वहां यदि आप जाएंगे तो वहां भी आपको ये और बातें, अनुभव की बातें आप अपने जीवन में स्वयं अनुभव करेंगे। अब तक तो ये हुआ है कि ज्ञान किसी ने पकाया और आपने खाया, है ना, लेकिन जो इसको डाइजेस्ट करने की भी तो ताकत चाहिए ना। अगर मेरा शरीर वीक है और मुझे हैवी खाना खिला दिया तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब आप खुद अपने आप को टाइम देकर के जो कुछ सुना है उसको एकांत में बैठ करके उसका चिंतन करेंगे, तो चिंतन करने से ज्ञान आपका बन जाएगा और बहुत ही आसानी से कैसे हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। और हम ये कहेंगे कि जब एक दीपक जगता है तो एक दीपक से अनेक दीपकों को जगाया जाता है, तो आप सभी वो दीपक हो जो यहाँ जग गए हो और आप वहां जाकर के अनेक दीपकों को जगाएंगे, अनेकों का जीवन आप बनाएंगे, तो उनके जैसा सुख और कोई नहीं होता है। ओम शांति।